नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। मैं जैसे पहले ही बताया था कि यहाँ आप सब आए हैं, मतलब आप जो कृष्ण भक्ति अपनाए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही आनंददायक व्यापार है। मुझे बहुत आनंद होता है ये देखकर कि आप सब कृष्ण भक्ति ग्रहण किए हैं और कृष्ण भक्ति के मार्ग में आने से कुछ लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। किसको लाभ हुआ है हाथ उठाइए। वंडरफुल। जिसको सही रूप से लाभ हुआ दो हाथ उठाइए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। दिल्ली में कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत सुंदर रूप से हो रहा है। आज मैं सुना दिल्ली में इस्कॉन का 14 मंदिर बन चुका है। पृथ्वी के कोई भी शहर में कृष्ण भक्ति का इतना सुंदर प्रचार नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 6-7 मंदिर हुआ है, बल्कि यहाँ 14 मंदिर बन चुका है और मैं सुना और अगले साल 4 नया मंदिर बनने वाला है। और इसका क्रेडिट कृतित्व हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का। गोपाल कृष्ण महाराज एक आदर्श लीडर हैं, इस्कॉन के एक आदर्श सन्यासी गुरु हैं, जिनका प्रभुपाद के प्रति जिनका कमिटमेंट और डेडिकेशन का कोई तुलना नहीं होता है। और उसका फल भी हम देख रहे हैं। 14 मंदिर ऐसे ही नहीं बना, इसका पीछे बहुत सारे कठिनाई और बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे योजना का प्रयोजन हुआ था। श्रील प्रभुपाद जिस रूप से कृष्ण भक्ति का प्रचार दुनिया भर किए हैं, उसका कोई दृष्टांत दुनिया में कभी नहीं हुआ। प्रभुपाद कृष्ण भक्ति भारत से बाहर ले गए, अमेरिका ले गए, वहां से शुरू किया। प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले भारत में प्रचार करने का बहुत सारे कोशिश किया था, बल्कि कुछ रिस्पॉन्स सही रूप से नहीं मिला। और क्योंकि हम भारतवासी का एक गुण है कि जब तक ना विदेश से स्वीकृति मिलता है तो हम उसको पहचानते नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद को वृंदावन छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा और अमेरिका जाकर अमेरिकनों को भक्त बना के भारत में लाना पड़ा और लाकर भारत में एक कृष्ण भक्ति का प्लावन बहा दिया है। और ये जो कार्य श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है ये बढ़ता ही जाता रहेगा। श्रील प्रभुपाद जब थे यहां तब कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत सुंदर रूप से हो रहा था और इस जगत छोड़ने के पहले, भगवत धाम में वापस जाने के पहले प्रभुपाद हम लोगों को बोले थे कि जब एक आचार्य अप्रकट होते हैं तो बहुत सारे समस्याएं दिखाई देती हैं, बहुत सारे समस्या का आगमन होता है। तब हमको पता नहीं था कि प्रभुपाद क्यों ऐसे कह रहे थे और हमें पता नहीं था, तब तो हम सोचते भी नहीं कि प्रभुपाद हम सब हमको छोड़ के चले जाएंगे। यद्यपि प्रभुपाद का शरीर उस स्वस्थ नहीं था, फिर भी हम सोचते थे प्रभुपाद बहुत दिन तक रहेंगे हमारे साथ। और ये भी सोचा, पहले तो हम नहीं सोचता था उस समय कि प्रभुपाद चले जाएंगे, और ये भी हम सोचा कि अगर प्रभुपाद जाएंगे भी तो इस्कॉन में कोई ऐसा समस्याएं नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद इतना सुंदर रूप से इस्कॉन को तैयार किए थे, इस्कॉन का आए सारे अरेंजमेंट किए थे, कैसा लगता था कि एकदम इस्कॉन एकदम सही रूप से चलता रहेगा। लेकिन प्रभुपाद के तिरोभाव के पश्चात, अप्रकट लीला के पश्चात हम देखा इस्कॉन में बहुत सारे समस्याएं आया और कभी कभी ऐसा लगा कि इस्कॉन शायद टूट जाएगा। वो सब उसी समय सबसे डिफिकल्ट और सबसे खतरनाक समय था प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद। और वैसे होता भी है धार्मिक संस्थान में, रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि जब फाउंडर आचार्य, फाउंडर को आचार्य का तिरोभाव होता है, अप्रकट होते हैं, तब वो संस्था टूट जाता है। लेकिन जब तक भी इस्कॉन में समस्याएं आई थी, लेकिन वो समस्या को हम उस समस्या के साथ हम मुकाबला कर सका और वो समस्या का समाधान कर सका और धीरे धीरे इस्कॉन अब बढ़ता ही जाता है। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड जो था उस समय को हम पार कर चुका है। सबसे कठिन स्थिति जो था उसको हम पार कर चुके हैं, तो अब तो मुझे तो लगता है कि इस्कॉन अब बढ़ता ही जाता है। और इस्कॉन का अंतिम परिणति क्या हो, परिणति क्या होगा, इन एवरी टाउन एंड विलेज, पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि पृथ्वी में, पृथ्वीते मतलब पृथ्वी में जत आछे जत नगर आदि ग्राम, जितने सारे शहर और गांव हैं, सर्वत्र हर जगह ये नाम संकीर्तन का प्रचार होगा, हरि नाम संकीर्तन मतलब महाप्रभु का जो ये संकीर्तन आंदोलन, इसका प्रचार होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान। भगवान का वाणी कभी व्यर्थ हो सकता है? नहीं, भगवान का वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। भगवान जो बोला वो होगा ही होगा। और आप हम देख रहे हैं किस तरह कितनी सुंदर रूप से कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, बढ़ता ही जाता रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि लगभग 30 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पंजाबी बाग में कृष्ण भक्ति इतना फैल जाएगा। छोटा सा एक मंदिर था, एक पुजारी था, एक टेंपल प्रेसिडेंट था और एक कुक था। 3 भक्त का मंदिर और सुबह भारत के लोग श्रद्धालु होते हैं तो सुबह शाम लोग आते थे दर्शन करने के लिए, दर्शन करके चले जाते थे। मंदिर भी आप शायद देखे होंगे, छोटा सा एक गराज था, जो मकान 2 पीढ़ी का मकान था और वो मकान का जो गैराज था ग्राउंड फ्लोर में वो गराज था मंदिर, और हम लोग रहते थे ऊपर। तो जो मकान जो था वो वहाँ पर हम रहते थे। तो दो 3 भक्त, एक टेंपल प्रेसिडेंट सांबदास, एक पुजारी और एक कुक, 3 भक्त और हम 2 सन्यासी, सुरभि महाराज और मैं। और मैं भी तो मेहमान था वहाँ, आई वॉज अ गेस्ट देयर मोर ऑर लेस, आई स्टेड फॉर 6 मंथ्स। जैसे मैं कह रहा था कि लोग दर्शन करने के लिए आते थे सुबह शाम, लेकिन क्लास में कोई बैठते नहीं, भगवान को दर्शन करके सब चले जाते थे। और आज हम क्या देख रहे हैं, और 25 साल बाद क्या होगा, उसका भी कल्पना हम आज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह कृष्ण भक्ति श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी सफल करते हुए आगे बढ़ता जाता रहता है। इस इस्कॉन का शुरुआत कैसे हुआ था आपको पता है? किसको पता नहीं है? अच्छा, मतलब सबको पता है। कौन सुनना चाहते हैं आप? अच्छा ठीक है, आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं भी बताने की कोशिश करूंगा। श्रील प्रभुपाद सन 1965 में अमेरिका गए थे। उस समय श्रील प्रभुपाद का उम्र कितना था? 70 साल। श्रील प्रभुपाद के पास कितने पैसा था, रुपया पैसा था? 40 रुपया, $6 का बराबर। श्रील प्रभुपाद कहाँ जा रहे थे उनको पता नहीं था। प्रभुपाद खुद बताया कि मैं जब जहाज से जब निकला उतरा तो मैं बायां तरफ जाऊंगा या दाहिना तरफ जाऊंगा वो मुझे पता नहीं था। आई डिडंट हैव एनी आइडिया वेदर टू गो टू लेफ्ट और टू राइट। और कहाँ ठहरेंगे उसका भी कुछ ठिकाना नहीं था। अब देखिए 70 साल की उम्र के एक साधु अमेरिका गए हैं जहाँ उनको कुछ पता नहीं था, वो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रोकेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति को साथ ही केवल उनका संपर्क था, जो पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा शहर बटलर में रहते थे। मथुरा के प्रभुपाद के एक जान पहचान व्यक्ति था, जिनका लड़का गोपाल अग्रवाल अमेरिका में रहते थे। तो प्रभुपाद को अमेरिका जाने के समय वीजा के लिए जो स्पॉन्सरशिप का ज़रूरत होता है, तो गोपाल अग्रवाल ने प्रभुपाद को स्पॉन्सर किया था। वही केवल एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में, जिसके साथ कुछ थोड़ा कुछ जान पहचान था, बल्कि कभी मिला नहीं, एक केवल स्पॉन्सरशिप भेजा। तो भारत छोड़ने के पहले जहाज में प्रभुपाद उनको एक खत लिखा, मैं आ रहा हूँ इस जहाज में इस तारीख मैं आ रहा हूँ। तो गोपाल अग्रवाल को ये अवसर नहीं मिला, आप आइए या मत आइए, ये लिखने का भी मौका नहीं था। तो गोपाल अग्रवाल ने, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो वो प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए एक ट्रैवल कंपनी को अपॉइंट किया। ऐसे होता है कि खुद ना जाने में अगर संभव नहीं है खुद जाने को, तो कोई और किसी को भेजने का ये एक कंपनी होता है। तो वो ट्रैवल एजेंट को आदमी को भेजा था, और उसको उसने प्रभुपाद के मिलने के बाद प्रभुपाद को बटलर जाने वाली एक बस में एक टिकट कर दिया, बस में बैठा दिया, और रात को 2 बजे बस पहुंचा बटलर में, और गोपाल अग्रवाल आया, आकर प्रभुपाद को रिसीव किया, घर में बुलाया नहीं। वहाँ अमेरिका में होता है, ये भारत में भी है, YMCA, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। वहाँ रहने का बंदोबस्त उतना अच्छा नहीं होता है, सस्ता रहने का जगह, वहाँ पर प्रभुपाद का रहने का बंदोबस्त किया। गोपाल तो था भारतवासी, बल्कि उनका पत्नी थी अमेरिकन, और एक बच्चा भी था। तो लेकिन प्रभुपाद का आचरण इतना सुंदर था कि जो ही प्रभुपाद के नज़दीक आते थे, एकदम उनके प्रति श्रद्धालु बन जाते थे। तो गोपाल का पत्नी सैली, यद्यपि अमेरिकन थी, भारतीय संस्कृति के प्रति और एक साधु के साथ कैसे आचरण करना चाहिए इस बारे में यद्यपि उसके कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रभुपाद के प्रति इतना आकृष्ट हो गए कि 2 हफ्ता के बाद प्रभुपाद जब बटलर छोड़ रहे थे तो रो रही थी। ऐसे अमेरिकन लोग रोते नहीं हैं किसी के लिए, बल्कि प्रभाव से, प्रभुपाद के प्रभाव से ये सैली अग्रवाल रोने लगी। वहाँ से प्रभुपाद गया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में भी प्रभुपाद ठहरा एक व्यक्ति के पास, जिसके साथ उस रहने के समय उनके साथ परिचय हुआ। वो है एक डॉक्टर जो योगा टीचर बन गया। उनको शायद पता चला कि डॉक्टरी करके जितना रुपया कमाएंगे, योगा टीचिंग करने से उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो वो योगा डॉक्टरी छोड़कर वो योगा टीचिंग शुरू किया अमेरिका में, एक आश्रम भी बनाया, आनंद आश्रम है भी अभी। और प्रभुपाद कुछ दिन के लिए वहाँ ठहरा, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद एक कमरा, एक अमेरिकन युवक के साथ प्रभुपाद रहने लगे, और बल्कि उस समय अमेरिकन के लड़के लोग लड़की लोग एलएसडी का नशा करता था, और एलएसडी का नशा बहुत ही खतरनाक है, वो एकदम पागल बना देता है। यद्यपि ये लड़का ये छोड़ दिया था प्रभुपाद के प्रभाव से, बल्कि फिर से वो नशा करना शुरू किया। तो एक दिन जब वो नशा में एकदम मग क्या मस्त था, तो प्रभुपाद को अटैक किया। तो प्रभुपाद वो वहाँ नीचे से ऊपर उतर गए, नीचे आ गए, और जिस एक व्यक्ति एक लड़का के साथ उनका परिचय हुआ था उसको फ़ोन किया, उसका नाम था माइकल ग्रांट। तो माइकल ग्रांट ने प्रभुपाद के रहने का एक बंदोबस्त किया उसके और एक दोस्त के साथ। अपना घर में प्रभुपाद को रहने का बंदोबस्त नहीं कर सका, बल्कि दूसरे और एक अमेरिकन लड़के के साथ प्रभुपाद का रहने का बंदोबस्त किया। और इस अवसर में एक जगह ढूंढने लगा जहाँ प्रभुपाद अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, प्रचार का कार्य। उन्होंने ही माइकल ग्रांट ही जो अमेरिका में जो इस्कॉन का पहला जो केंद्र बना था 26 सेकेंड एवेन्यू, वहाँ वो जगह वो आयोजन किया। और ऐसे और उस एक छोटा सा दुकान था, जैसे इस एक छोटा सा दुकान ऐसा नहीं, ये तो फ्रंट तो चौड़ा है, उसका फ्रंट था नैरो और पीछे था लंबाई। और वहाँ पर प्रभुपाद भगवद गीता का की क्लास शुरू किया, कीर्तन शुरू किया। और धीरे धीरे लड़के लोग आना शुरू किया और प्रभुपाद की दात द्वारा प्रभावित होने लगा। तत्पश्चात प्रभुपाद दीक्षा दिया उनको, 8-9 लड़का लड़की को, उनमें से था भाई ये भी माइकल ग्रांट और उसका गर्लफ्रेंड जेनी। माइकल ग्रांट का नाम बना मुकुंद और जेनी का नाम बना जानकी। और दीक्षा के बाद प्रभुपाद बोला उनको, अब तो तुमका दीक्षा हुआ, तुम्हारा दीक्षा हुआ, अब तो तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तरह नहीं रह सकते हो, तुमको आप यू हैव टू गेट मैरिड, तुमको शादी करना होगा। तो प्रभुपाद ने ही उसको शादी करवाया। यद्यपि सन्यासी ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि प्रभुपाद प्रचार के लिए वैसे शुरू ये किया। और माइकल ग्रांट तब प्रभुपाद की प्रेरणा से सैन फ्रांसिस्को गए। उस समय सैन फ्रांसिस्को ही अमेरिकन युवा युवतियों के लिए एक मशहूर स्थान था, जहाँ सब वहाँ इकट्ठा हो रहा था। और अमेरिका का स्थिति भी उस समय कुछ कुछ ये था, विशेष स्थिति में था कि आध्यात्मिक चेतना का विकास उस समय हो रहा था। जो नौजवान लड़का लड़की भौतिक संस्कृति को, भौतिक उन्नति को, भौतिक प्रगति को त्याग करके वो लोग आध्यात्मिक चेतना का विकास करने के लिए तय किया, प्रेरित प्रेरणा प्राप्त हुआ। बल्कि उनको पता नहीं था कि कैसे आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है। वो लोग सोचता था कि एलएसडी का नशा करके आध्यात्मिक एलिवेशन होगा, लेकिन प्रभुपाद ने उनको समझाया कि अगर आध्यात्मिक मार्ग में तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो 4 काम त्यागना पड़ेगा। नशा त्यागना पड़ेगा सबसे पहले, मांसाहार त्यागना होगा, अवैध संग वर्जन करना होगा और जुआ आदि खेलना बंद करना, क्योंकि ये है धर्म के चार पैर, धर्म के चार स्तंभ, सत्यम शौचम तपोदया। ये चार स्तंभ जब धर्म का टूट जाता है तभी शुरू होता है जुआ, अवैधाचार, नशा, मांसाहार। और प्रभुपाद के प्रभाव से, प्रभुपाद के ये शिक्षा के द्वारा उन्होंने ये चार काम त्याग दिया और भक्ति का उन्मेष साधन करने के लिए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगा। तो माइकल ग्रांट सोचा कि अमेरिका में ये सैन फ्रांसिस्को में जहाँ गोल्डन गेट पार्क है, गोल्डन गेट पार्क के पास ही दो रास्ता का समन ये हो रहा है मिलन, वो है एक रास्ता का नाम है हेट और दूसरा रास्ता का नाम है एशबेरी। तो वो इलाका का इसलिए नाम हुआ है हेट एशबेरी। तो ये हेट एशबेरी में जितने सारे लड़का लड़की इकट्ठा होता था और सोते थे पार्क में और दिन भर ऐसे नशा करता था, ये करता था। तो वहाँ प्रभुपाद के लिए माइकल ग्रांट मुकुंद महाराज, जो बाद में सन्यासी बना, मुकुंद महाराज बना, उन्होंने एक जगह और एक स्टोर फ्रंट किराए पे लिया और प्रभुपाद को बुलाया और उसके साथ और उसके और दो दोस्त और उनके पत्नी भी युक्त हुए थे, जो बाद में जिसका नाम हुआ श्याम सुंदर प्रभु और उनका पत्नी मालती माता जी और गुरुदास प्रभु और जमुना माता जी। तो ये तीन, मुकुंद महाराज, श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास प्रभु और उनके पत्नियां जानकी, मालती और जमुना, ये तीन छह व्यक्ति, ये तीन कपल सैन फ्रांसिस्को में प्रचार कार्य प्रभुपाद के लिए शुरू किया। तो ऐसे प्रभुपाद अमेरिका से गया सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को के बाद लॉस एंजलिस में, उसके बाद बोस्टन, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, डेनवर, एक से एक जगह में कृष्ण भक्ति का प्रचार होने लगा। ये नौजवान लड़का लड़की जाके जगह जगह में नया सेंटर शुरू खोलना शुरू किया और प्रभुपाद भी जाके उनको मदद देना शुरू किया। इसके बाद मुकुंद, श्याम सुंदर, गुरुदास, ये तीन व्यक्ति, तीन भक्त और उनके पत्नियां सोचा कि अमेरिका में तो प्रचार हो रहा है, अब अमेरिका के बाहर जाकर प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर ये तीन कपल, हिंदी में कपल को क्या बोलते हैं, दंपति, दंपति, ये तीन दंपति गए लंदन। सीधा लंदन नहीं जा पाया क्योंकि अमेरिका से लंदन का फेयर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब लंदन ना जाकर अगर एम्स्टर्डम में जाते थे या लक्समबर्ग में जाते थे तो बहुत कम उसका किराया होता। जैसे मुझे याद है कि लक्समबर्ग से न्यूयॉर्क राउंड ट्रिप उस समय का भाड़ा था 98 डॉयच मार्क और दो डॉयच मार्क एक डॉलर, तो मतलब $49 round trip from Amsterdam, no, Luxembourg or even Amsterdam to America. तो उन्होंने ये सस्ता दाम का जो टिकट है उससे एम्स्टर्डम आया. तो सोचा एम्स्टर्डम से फेरी से चैनल क्रॉस करके लंदन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे. बल्कि जब गया वहाँ तब उनको पता चला कि जब इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड में घुसने के लिए, एंट्री प्रवेश करने के लिए कुछ रुपया दिखाना पड़ता है. तो उनके पास उतना रुपया नहीं था. तो उन्होंने तय किया कि एक एक कपल जाएंगे, जितना रुपया था इकट्ठा करके एक कपल गया लंदन, और जो पैसा जो था वो भेज दिया मनी ऑर्डर करके एम्स्टर्डम में. सो सेकंड कपल गया, ऐसे एक के बाद एक तीन दंपति लंदन में पहुंचा. लंदन में उनको भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, रहने का कोई बंदोबस्त नहीं था. तो उन्होंने ये किया, भारतीय कोई किसी के साथ परिचय हुआ, उनके घर में ठहरने लगे. और प्रचार करने के लिए कोई भी उनको सुनने के तैयार नहीं था. जिस जो भारतीय के घर में रहते थे वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे. वो धार्मिक था, देखा ये बच्चे हैं भगवान की वाणी प्रचार करना चाहते हैं, तो रहने के लिए जगह दिया. बल्कि बस वहाँ वहाँ तक ही, और वो भी कोई अमीर आदमी नहीं था. तो उन्होंने सोचने लगे कैसे प्रचार करेंगे, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है. तो एक दिन उन्होंने देखा एक पोस्टर में बीटल्स. बीटल्स को आपको याद है, उस समय 60s में वो लोग थे पृथ्वी में सबसे मशहूर व्यक्ति. ये चार गाना संगीत ग्रुप का एक चार, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन, रिंगो स्टार और पॉल मैकार्टनी. ये चार एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था बीटल. और सारा दुनिया भर उन्होंने एक विशाल आलोड़न सृष्टि किया संगीत के माध्यम. तो और एक पोस्टर देखा कि वो चार भारतीय वेश पहने हुई है. तो बोले ये तो भारतीय का कृष्टि संस्कृति, भारतीय दर्शन को और योग को अपना रहा है, चलो उनके साथ मिलते हैं. बल्कि वो लोग इतना मशहूर था, उनके पास साथ अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल था. तो एक दिन श्याम सुंदर के साथ अचानक लंदन में उसका एक परिचित व्यक्ति जो सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले थे उसके साथ मुलाकात हुआ. तो पूछा क्यों आए हो तुम यहाँ, क्या कर रहे हो? तो बोला मैं बीटल्स के साथ मिलने के लिए आया. वो जो व्यक्ति था वो था और एक म्यूजिक ग्रुप है जिसका नाम था द ग्रेटफुल डेड. वो ग्रेटफुल डेड कंपनी का मैनेजर, ग्रुप का मैनेजर. तो वो बीटल्स को मिलने के लिए आया था. तो श्याम सुंदर ने बोला तुम बीटल के साथ हमको परिचय करवा गए? वो बोला ठीक है, तुम आ जाना कल, मैं इतने समय, शायद 11 या 12 बजे अपॉइंटमेंट था उसका. बोला तुम आओ, मैं तुमको बीटल के साथ परिचय करवा दूंगा. लेकिन जब श्याम सुंदर गया तो वो गेट में जो दरवान है, गेट कीपर, वो पूछा अपॉइंटमेंट है क्या नहीं उनका. तो बोला हाँ अपॉइंटमेंट है, इसके माध्यम रॉक्स कैली, उसका नाम था रॉक्स कैली, रॉक्स कैली के माध्यम, तो वो दरवा नहीं सुना, बोला नहीं ऐसा नहीं जाने देंगे आपको। तो समझाने का कोशिश किया, देखो मेरा दोस्त है वो रॉक्स कैली, वो ग्रेटफुल डेड का मैनेजर है और हमारे साथ उसका बीटल्स के साथ अपॉइंटमेंट है। तो ऐसे जब बातें कर रहे थे तब जॉन लेनन का पत्नी जिसका नाम था यको ओनो, यको ओनो अपना गाड़ी लेके वाइट रोल्स रॉयस लेके आई। तो श्याम सुंदर को देखते ही वो पूछा, तुम जरूर जॉन का फ्रेंड हो? और श्याम सुंदर बोला, हाँ हाँ मैं जॉन का फ्रेंड हूँ। तो बोला, आओ अंदर आ जाओ। तो वैसे भगवान की कृपा से उस समय यको ओनो आ गया और श्याम सुंदर को ले गया। तो श्याम सुंदर अंदर जाके बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं रॉक्स कैली को आने के लिए। तो उस समय जॉर्ज हैरिसन बीटल में से जो एक था, वो वहाँ आकर श्याम सुंदर को देखा और देख ही पूछा, तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम लोगों को देखा था सैन फ्रांसिस्को में और गाना गाते हुए रास्ता में नाचते हो, और देखते ही मैं सोचा कि तुम्हारे साथ ज़रूर मिलना है, बल्कि मिलने को कितना कोशिश किया बल्कि तुम लोगों को नहीं मिला कहीं भी। तो तब ऐसे जॉर्ज हैरिसन के साथ श्याम सुंदर का परिचय हुआ। तो जॉर्ज हैरिसन उनको बताया, तुम आओ मेरे घर में आओ, मैं मिलूँगा। तो अगले दिन सब जाकर उनके घर में मिला। यहाँ से शुरुआत हुआ इंग्लैंड का प्रचार। और जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद के साथ मिलने के बाद इतना प्रभावित हो गया कि प्रभुपाद को जो कुछ प्रयोजन था वो मिटाया। कृष्ण बुक आप लोग देखे, कृष्ण बुक वो जॉर्ज हैरिसन ने छपाया। कृष्ण बुक उस समय ये बुक छपाने के लिए 5,000 पाउंड या 8,000 पाउंड का ज़रूरत हुआ। प्रभुपाद के पास 5,000 या 500 पाउंड भी नहीं था उस समय छपाने के लिए। जॉर्ज हैरिसन स्पॉन्सर किया। इंग्लैंड में हमारा जो बहुत सुंदर बहुत मशहूर जो आश्रम है भक्ति वेदांत, ये ओ भक्ति वेदांत मैनर, ओ जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद के लिए मोला था। और उस समय वो जो प्रॉपर्टी वो 17 एकड़ ज़मीन पर था, लेकिन आज वहाँ 100 एकड़ ज़मीन है। ऐसे हम देखते हैं कि इस संस्थान इस्कॉन का कृष्ण भक्ति का प्रचार जो हो रहा है ये भगवान का कृपा से ही हो रहा है। प्रभुपाद को कृष्ण ऐसी एक समय में भेजा जब अमेरिका प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए एकदम तैयार बन चुका था, और धीरे धीरे इसका प्रचार होने लगा। जैसे जॉर्ज हैरिसन आकर इस्कॉन को एक बहुत ही सपोर्ट दिया, क्योंकि जितने सारे नौजवान था उस समय का, सब बीटल्स का बहुत बड़े भक्त बन गए थे। और बीटल्स ने प्रभुपाद का जो उद्देश्य उसको लेकर कृष्ण भक्ति को आधार पर एक एल्बम तैयार किया जिसका नाम था कृष्ण भक्ति के आधार पर। ये एक एल्बम रिकॉर्ड बनाया जिसका गाना था माय स्वीट लॉर्ड, माय लॉर्ड आई वांट टू सी यू, आई वांट टू बी विथ यू, हे भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे एक बहुत सुंदर गाना बनाया और ये गाना उस समय दुनिया में 10 सबसे प्रसिद्ध गाना में से एक बन चुका था और इसके कारण सारा दुनिया का लड़के लड़की लोग इस्कॉन के द्वारा प्रभुपाद के शिक्षा के द्वारा प्रभावित हो गया था और जब भक्त लोग जाने लगा तो एक से एक जगह में कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ता ही जाता रहा। तो वैसे लंदन में, इसके बाद पेरिस में, इसके बाद जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, स्पेन में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क में, हर जगह कृष्ण भक्ति यूरोप में फैल गया। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद के कुछ भक्त ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ भी प्रचार करना शुरू किया। फिजी गया, वहाँ भी प्रचार करना शुरू किया। एक लड़का, उसका उम्र था उस समय 18 साल, वो देखा कि हर जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार हो चुका है, तो वो सोचा मैं कहाँ जाऊँगा, सब जगह तो प्रचार हो गया, तो तब देखा अफ्रीका में प्रचार नहीं हुआ, तो जाके प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं अफ्रीका जाके प्रचार करना चाहता हूँ। देखो क्या उसका उनका उत्साह कितना था उस समय का, और ये 17-18 साल का लड़का चला गया साउथ अफ्रीका में, अमेरिकन लड़का, और साउथ अफ्रीका में उस समय ये था एपर्थेट था। एपर्थेट का मतलब एक जाति दूसरे जाति के साथ मिल नहीं पाता था, जो अफ्रीकन है वो अफ्रीकन के साथ ही उसका संपर्क, जो भारतीय है वो भारतीय का साथ ही संपर्क, वो जगह जगह में उसका इलाका था, और जो जो यूरोपियन है, श्वेतांग है, उसको भी रहने का जगह अलग है। अफ्रीकन के साथ श्वेतांग का, इंडियन के साथ श्वेतांग का कोई मिलने का अवकाश नहीं था उस समय, बल्कि ये भक्त शुदी दास हमारा गुरु भाई, वो जाके अमेरिका साउथ अफ्रीका में प्रचार शुरू किया। वो भी अकेला चला गया, और ऐसा हुआ प्लेन में दो भारतीय के साथ उसका परिचय हुआ, और वो बताया किस लिए वो जा रहा है, तो भारतीय लोग बोला ठीक है आप हमारे घर में आकर रहिए। तो वहाँ जाके प्रचार करना शुरू किया, बल्कि जब खबर मिला सरकार को, सरकार था जिसको बोर कहता है, बोर मतलब बोर शब्द का असल अर्थ होता है गवार, गवार मतलब जो जिसका काम है गांव के रहने वाले खेती बाड़ी करने वाला, उसमें कुछ और कुछ करने का लायक नहीं है, वो लोग अफ्रीका को साउथ अफ्रीका का गवर्न कर रहा था, और था वैसे जर्मनी और हॉलैंड के रहने वाले लोग। तो उनको जब खबर मिला कि ऐसे एक श्वेतांग वाइट इज मिक्सिंग विद द इंडियन, स्टेइंग विद द इंडियन, उसको आके गिरफ्तार कर लिया, तब खुदी का पिताजी ने आया अमेरिका से आकर उसको छुड़ाए। तो ऐसे कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू होने लगा, और आपको तो पता है कि 10 साल के अंदर पृथ्वी के जितने सारे बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार हो चुका था। श्रील प्रभुपाद 10 साल के अंदर 108 मंदिर दुनिया भर बनाए। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद को जो ये जो कार्य है, मिशन है, इसमें मदद देते रहना, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का योजना है, चैतन्य महाप्रभु का संकल्प है, चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है। अगर इस कार्य में हम युक्त तो हो सकते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंद देह।